Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Are Murkha Malamutra ke ye thaile par to itna asakta hua hai, itni ke आसक्ति भगवान राम प्रति होता तो तेरा उद्धार हो जाता। इतने वक्त तो उसने बोला था और तुरंत दरवाजा खोल के और घर से निकाल दिया उसने, उनकी पत्नी ने। आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके शरीर में जो दुर्गंध आ रहा था, लाश के सड़ी हुए लाश की, एक तो उसकी बुद्धि में जो दुर्गंध है, वासना है, मूर्खता है, वो दूसरा शरीर में कैसे सहन करती, तो उसको निकाल दिया जा। तो उस वाक्य उसको ऐसा लग गया, भगवान की कृपा हो गई, वही महामंत्र बन गया, भगवान राम प्रति प्रेम जग गया और वही संत तुलसीदास जी बन गए, भगवान के परम भक्त, अमर भक्त बन गए। हम ये बात कह रहे जा रहे थे कि कई बार वस्तु को जान लो तो समस्या आ जाती है, नहीं जानो तो बड़ा काम क्या है। मुर्दे को मुर्दे के रूप में नहीं जाना, तुलसीदास जी का काम बन गया। सर्प को सर्प के रूप में नहीं जाना तो तुलसीदास जी का काम बन गया। और कई बार जान जाने पर सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कांच के टुकड़ों को लेके आवे और हीरा मानकर बैठ जाए तो उसके पास खाने के लिए मन के लड्डू इतने तैयार हो जाएंगे, इतने तैयार हो जाएंगे, कल्पना करने लगेगा ये इतनी कीमत का हीरा है, इतना घर बनाऊंगा, ये गाड़ी इतनी पैसा, इतना मूल्य का होगा, इतने से ये गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, मन के लड्डू हजार तैयार हो जाएंगे। क्या आनंद आएगा उसको। और जब वो बाजार में बेचने जाता है, पता चलता है कि यह तो हीरा नहीं है, कांच का टुकड़ा है, जब ज्वेलरी उसको फेंक देता है तो जानने से दुख हो गया। कांच को कांच के रूप में जाना तो उसको दुख हो गया, नहीं जानता तो बड़ा आनंद था। उसके दुख का यही कारण है कि उसी कारण है क्योंकि वो उस हीरे के टुकड़े को ले गया ज्वेलरी का, नहीं तो बरसों बैठता है, वो क्या आनंद आता उसको। हमारे पास जो संपत्ति है अभी, उसको भोग कर हम आनंदित नहीं हो रहे हैं। पैसा तो बैंक में है, गहने तो लॉकर में है, लेकिन है इतनी कहने से हमको आनंद आ रहा है, भोग कर आनंद नहीं आ रहा है। मेरे पास ये है, होने की जरूरत नहीं, मान लो ना भाई है। और दूसरी बात, इधर सर्प को डोरी को सर्प मान रहा था और भयभीत हो रहा था, तब डोरी को डोरी जान गया तो सारा भय चला गया, आनंद आ गया। इधर कांच को हीरा मान रहा था, आनंद आ रहा था, कांच को कांच जान गया तो दुख हो गया। उधर डोरी को सर्प मान रहा था, भयभीत हो रहा था, सर्प को डोरी जान गया तो भय खत्म, आनंद। अरे भाई, किससे कौन किसको आनंद आता है, सब सुख और दुख मान्यता का विषय है, मन कल्पित है। अनुकूल प्रतिनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। किसी भी घटना को तुम अपने उसको एक्सेप्ट कर लो तो सुख हो जाएगा, रिजेक्ट करने लग जाओगे तो दुख होगा। तो इसीलिए वेदांती लोग कहते हैं कि प्रारब्ध अनुसार आए हुए प्रसंगों को तुम प्रसन्नता से स्वीकार कर लो, कोई समस्या नहीं होगा। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहई ग्रासांबु वृष्टिया चात्म विवृद्धि जन्म, जैसे अन्न और जल के द्वारा आत्म विवृद्धि होती है, चाहे वह मनुष्य का हो चाहे पशु का। यहां आत्म शब्द का अर्थ होता है शरीर, क्योंकि अन्न जल का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं है। जैसे अन्न जल से शरीर बढ़ता है, भोजन और पानी कम करोगे तो शरीर अपने आप घटने लग जाएगा, और भोजन पानी बढ़ता जाएगा, कैलोरी बढ़ता जाएगा तो शरीर बढ़ता जाएगा। उपनिषद तो यहां तक कहते हैं शरीर केवल अन्न जल से शरीर का ही विकास होता है, ह्रास होता यह नहीं है, मन का भी उस अन्न जल से संबंध है, मन भी घटता है और बढ़ता है। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है, अन्नमयम ही सौम्य मना। हे पुत्र, तुम्हारे पास जो मन है वह अन्नमय है। अन्नमय इस अर्थ में नहीं है कि वो अन्न से बना है, ऐसा नहीं है, नहीं तो वेदांत की उस प्रक्रिया से विरोध होगा। मन मूल रूप में उपादान कारण तो अन्न नहीं है, मन का मूल रूप में उपादान कारण तो अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्व गुण हैं। फिर यहां अन्नमय क्यों कहा, तो उसका अर्थ किया है कि अन्न से अभिवृद्धि को प्राप्त होने वाला है, बढ़ने वाला है, विकास होने वाला है। मन बना तो सत्व गुण से, लेकिन मन का जो विकास होगा वो अन्न से होगा। जैसे किसी भी फूल का वो अंकुर तो उसके बीज से अंकुरित हुआ, बीज से अंकुरित हुआ हुआ वो अंकुर है, उसका विकास तो मल और जल से होगा ना। बीज तो उसको केवल अंकुरित करने में हेतु है, अंकुर का उपादान कारण है। वो अंकुर जब विकास होना होगा, अंकुर को बढ़ना होगा, वृक्ष बनकर फूल पत्ते आदि सब बनना होगा, तो उसके विकास में तो मल और जल है, हेतु है, मिट्टी मल जल। इसी तरह मन का उपादान कारण तो सत्वगुण है, लेकिन उस सत्वगुण उपादान कारण वाला जो मन है उसका जो विकास होगा वह तो अन्न से ही होगा। इसलिए कहा कि अन्नमयम ही सौम्य मना। ये पुत्र, तुम्हारे पास जो मन है वह अन्न से विकसित होता है। इसलिए भाषा में भी ये वाक्य कहा जाता है, लोकोक्ति बोलते हैं इसको, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अन्न के अनुसार वो रूप बदलता है। अन्न के अनुसार रूप बदलने का मतलब ये हुआ कि अन्न सात्विक है तो मन सात्विक के रूप में विकसित होगा, अन्न राजसिक है तो मन रजोगुण से युक्त होकर विकसित होगा, और अन्न तामसिक है तो मन तमोगुण से युक्त होकर विकसित होगा। उदाहरण दिया, तुम्हें यदि विश्वास न हो तो प्रयोग करके देख लो। 15 दिन तक तुम अन्न नहीं खाना और जितना चाहे पानी पी लेना, लेकिन अन्न नहीं खाना। और पानी पीते रहोगे तो प्राण का संबंध पानी से है, प्राण निकलेगा नहीं। प्राण का संबंध अन्न से नहीं है बाबा, शरीर का संबंध अन्न से है, प्राण का संबंध पानी से है। अन्न मिलता रहेगा, शरीर बढ़ता ही रहेगा और शरीर टिका रहेगा, कमजोर नहीं होगा। और पानी मिलता रहेगा तो प्राण स्थिर होगा। तो दलकारुणी ने कहा श्वेत केतु को, तुम यथेच्छा जितना पीना हो पानी पी लेना, अन्न एक कण भी नहीं खाना। तो एक दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, धीरे धीरे 15 दिन तक उसने अन्न नहीं खाया तो शरीर भी कमजोर हो गया, साथ ही साथ मन भी इतना कमजोर हो गया कि पहले जो वेद आदि उसको कंठस्थ स्मृति में था, सुनाता था A to Z पूरे का पूरा सुनाया करता था। 15 दिन के बाद जब पिता ने बुलाया, बेटा अब तुम आओ, दुबला पतला था बेचारा। उद्दालक आरुणि ने कहा कि बेटा तुमने जो वेद पढ़ी है वो जरा सुनाओ, तो कुछ भी नहीं सुना पाता है। पिताजी सब गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, कुछ याद नहीं हो रहा है। अच्छा जा कान शुरू कर, और गया और अन्न खाना शुरू किया। 15 दिन के बाद बुलाया कि बेटा तुमने जो वेद पढ़ी है पहले गुरुकुल में जरा सुनाओ, तो भय फटाफट टेप रिकॉर्ड की तरह सुना दिया। पता चला तुमको, देखो प्रयोग करके दिखा दिया ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? मन अन्न से संबंध रखता है। अन्न का स्थूल भाग मल बन जाता है, मध्यम भाग शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वह मन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उस सूक्ष्म भाग से बढ़ता है मन। मध्यम भाग से शरीर बढ़ता है, सूक्ष्म भाग से मन का विकास होता है, मध्यम भाग से शरीर का विकास होता है। ग्रासांब वृष्टिया चात्म विवृद्धि, जैसे देखने में आता है जल और पानी से शरीर की अभिवृद्धि होती है, इसी तरह जन्म सिद्ध किसके द्वारा? बोले कर्मों के द्वारा। कर्म की अभिवृद्धि होती है किसके? तो बोले संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ही कर्म अभिवृद्धि। इस सब कर्मों के बढ़ने में मूल कारण है मोह, और उसके मूल कारण है वस्तु की दृष्टि, उसका कारण है स्पर्श, उसके कारण है संकल्प। कर्मानुगान अनुक्रमेण देही, देही शब्द का अर्थ होता है देह का मालिक, देह में रहने वाला, देही देह और देही, रथ और रथी, रथ में मालिक की तरह बैठे वो रथी, रथ को चलाने की तरह बैठे वो सारथी, सहरथी है वो। वो मूल गद्दी में नहीं बैठेगा, आगे बैठेगा और उसको चलाने का काम करेगा। रथी तो चलाने का काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा। इसलिए है तो सहरथी है, तो आधा रथी तो वो भी है। एक रथी कुछ किए बिना आनंद से बैठता है, दूसरा रथी बैठता तो रथ में ही है लेकिन करता हुआ बैठता है, तो ये सारथी, तो सहरथी है, अपभ्रंश होकर सारथी बन गया। कर्मानुगान अनुक्रमेण देही, देही माने जिसका प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का, वह कर्म के अनुसार क्रमशः एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरा देह, देह से देहांतर, उसमें वह अनुगमन करता रहता है। अनुगा कर्म अनुगा कर्मानुसारी गमन। स्थाने स्वरूपान्य विभी संप्रपद्यन्ते प्रपद्यते, स्थानेषु माने शरीरेषु। शंकराचार्य जी ने स्थानेषु का अर्थ किया है देवतीर्यं मनुष्यादि स्वभि संपद्यते, देव तीर्यक आदि पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग आदि स्थान यानी शरीर की प्राप्ति करता है वो। तो एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति करता है, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्ति करता है। इसमें मूल कारण क्या है? तो बता दिया कर्माभिवृद्धि। ज्यो ज्यो कर्म घटते जाएंगे त्यों त्यों जन्मांतर की प्राप्ति की संभावना कम होती जाएगी। ज्यो ज्यो कर्म बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों जन्मांतर की प्राप्ति की संभावना बढ़ती जाएगी। शरीरस्य वृद्धिर्जायते यथा तद्वद इत्यर्थ, उस बात को और आगे स्पष्ट करते हैं शंकराचार्य जी। ये जीव का ही स्वरूप है ये भी। स्थूलाणि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति, ये देही जन्मांतर में किस किस का शरीर में जाता है, कौन कौन से रूप धारण करता है। स्थूलाणि सूक्ष्माणि, बहुत से तो स्थूल शरीर की प्राप्ति होगी और बहुत से सूक्ष्म शरीरों की प्राप्ति होगी। कहां तो इस जीवात्मा को हाथी का शरीर प्राप्त होगा, कहा तो इस जीवात्मा को छोटे छोटे जल के कण बैक्टीरिया के रूप में उसको प्राप्त होगा शरीर, कहां तो इसको मलेरिया और स्वाइन फ्लू के बैक्टीरिया की तरह उसको प्राप्त होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, कहां वो स्वाइन फ्लू के छोटे से कण, कहां आपका इतना बड़ा शरीर, और उसे कण से तुम्हारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। ये तो ठीक इसी तरह है, संसार में कहते हैं कि हाथी किसी से नहीं डरता है, एक ही चीज से डरता है वो हाथी, वो चींटी से डरता है। आपको लगेगा कि ये क्या विचित्र बात कर रहे हैं, कहां हाथी और कहां चींटी, और हाथी चींटी से डरे भयभीत होवे, ये किसी को समझ में आएगी? लेकिन सत्य है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्यों डरती है वो चींटी से? वो घास चरते समय में वो हाथी जब घास चरने लगता है तो उसमें से छोटी सी चींटी उसके नाक के अंदर यदि घुस जावे तो हाथी वही मृत्यु का कारण हो जाएगा हाथी के लिए। इसीलिए हाथी को प्राकृतिक रूप में ही वह घास चरने से पहले जोर से हवा से उसको फुंकार मारता है ताकि छोटे मोटे जो चींटियां हैं, बैक्टीरिया हैं, स्वाइन फ्लू, आप लोग तो आप लगाओगे नाक में मास्क लगाओगे और हाथी को तो मास्क लगाएगा कि नहीं, तो क्या करेगा, फूं करेगा, सब चींटी उड़ के भाग जाएंगे, तो फिर घास को उसको पकड़ पकड़ के सूंड से खाएगा वो। तो सूक्ष्माणी रूप स्थूलाणी सूक्ष्माणी बहुनी, अनेक अनेक बार अनेक अनेक सूक्ष्म शरीर तुमको मिलेगा, अनेक अनेक बार स्थूल से स्थूल शरीर मिलेंगे। रूपाणी शरीराणी आकार प्रकार से युक्त शरीर की प्राप्ति होगी। सुगुणेर विरणोती प्राप्नोती, गुण शब्द का अर्थ वासना और वहां कर्म, ये बात अन्य उपनिषद में कह दी है। योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाने वाले जीवात्मा फिर जन्म लेते हैं, कहां और किस रूप में? कभी कभी तो स्थावर जीव में चले जाते हैं, कभी कभी जंगम जीव में चले जाते हैं, कभी कभी शरीर धारण करने के लिए योनिम आप्रपद्यन्ते पंचाग्नि विद्या के माध्यम से चले जाते हैं, कभी कभी बिना पंचाग्नि के भी चले जाते हैं। ब्रह्मसूत्र के स्वाध्याय में कल के प्रसंग में ये आएगा, प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्ष के द्वारा कि जीवात्मा जब शरीर को धारण करने के लिए मृत्युलोक में आता है तो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से आता है, पांचवी आहुति के द्वारा उसको शरीर की प्राप्ति होती है, तब सभी जीव मरने के बाद स्वर्ग लोक जाते हैं, पूर्व पक्ष का एक कहना था। उसका उत्तर दिया कि सभी जीव मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते, तो बोले जो स्वर्ग नहीं जाएंगे तो फिर पंचाग्नि विद्या से शरीर प्राप्ति कैसे होगी उनकी उस प्रक्रिया से? बोले नहीं, ऐसी भी श्रुति है जिस जीवों को पंचाग्नि के द्वारा शरीर प्राप्त नहीं करना है, कोई तीन अग्नि से ही शरीर प्राप्त करते हैं, कोई निराग्नि शरीर प्राप्त करते हैं, त्रिअग्नि से, कोई द्वि अग्नि से, कोई चार अग्नि से प्राप्त करेंगे, ये नियम नहीं है कहीं कि पांच ही अग्नि से शरीर प्राप्त होगा, पांच अग्नि नहीं हो तो शरीर प्राप्ति की नहीं होगी, ये निषेध वचन कहीं श्रुति में है ही नहीं, ये कहा है पंचाग्नि न हो तो शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा निषेध वचन किसी भी श्रुति में नहीं है। पंचाग्नि से शरीर प्राप्ति होगी ये वाक्य तो है, लेकिन पंचाग्नि न हो तो शरीर प्राप्ति नहीं होगी निषेध वचन नहीं है। इसीलिए तो कुछ मनुष्य चार अग्नि से ही प्राप्त हो गए, शरीर प्राप्त कर लेते हैं। पांचवी आहुति उनको देना नहीं पड़ा, शरीर मिल गया। कल के स्वाध्याय में यह प्रसंग आएगा, मैं आज ही बता रहा हूं आपको। चौथे अग्नि में ही शरीर किसको प्राप्त हुआ, तो द्रोणाचार्य को। वहां योषिता अग्नि की प्राप्ति कहां हुई बोलो? पंचाग्नि विद्या को तो सुना है ना आप लोगों ने। योषिता अग्नि की प्राप्ति द्रोणाचार्य को कहां हुई? द्युलोक अग्नि की प्राप्ति हुई, प्रजन्य अग्नि की प्राप्ति हुई, पृथ्वी अग्नि की प्राप्ति हुई, पुरुष अग्नि की प्राप्ति तो हुई, योषिता अग्नि की प्राप्ति हुई नहीं। द्रोणाचार्य के बाप के शरीर से निकलने वाला वीर्य को एक दोने में सिंचन कर लिया और वहीं से उनका शरीर तैयार हो गया, इसलिए तो उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। आप समझ गए ना? उनका नाम द्रोणाचार्य होने में क्या क्या रहस्य था? उनके बाप के वीर्य को दोने में सिंचन किया और दोने में संग्रह करके दोने में उनको बढ़ाया गया। द्रोण ही, दोना ही उनके गर्भाशय है। तो मातृ में सिंचन न होने के कारण पांचवी अग्नि तो योषिता है, तो चार अग्नि से ही उनको शरीर की प्राप्ति हुई कि नहीं? और कहते हैं और आगे देख लो, दृष्टद्युम्न और सीता आदि, तो सीता चलो चार अग्नि, सीता का भी तो पांचवी अग्नि में शरीर नहीं हुआ, योषिता अग्नि में सिंचन हुआ ही नहीं, आहुति हुई नहीं, सीता का शरीर बन गया। शास्त्र में कहते हैं कि दृष्टद्युम्न और द्रौपदी अयोनिज है, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों अयोनिज हैं। अब इन दोनों का जो शरीर है वो तो द्रोणों की तरह, द्रोणाचार्य जी की तरह चौथे अग्नि की भी प्राप्ति नहीं करके तीसरे अग्नि से इनके शरीर की प्राप्ति हो गई। कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? तब वह अविचार यज्ञ किया था, द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए, तो वह अग्नि से प्रकट हो गए, यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। वहां पुरुष अग्नि की भी प्राप्ति नहीं हुई उनको, पुरुष अग्नि ही प्राप्त नहीं हुआ। किसी पुरुष ने अन्न खाया, अन्न खाकर रजवीर बना, जैसे द्रोण के लिए तो कम से कम पुरुष अग्नि चाहिए, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी के लिए तो पुरुष अग्नि भी की प्राप्ति नहीं हुई है। द्युलोक अग्नि, प्रजन्य अग्नि, पृथ्वी अग्नि, अन्न में आ गए, आहुति दिया तो यज्ञ कुंड से पैदा हो गए, तीन ही अग्नि से पैदा हो गए, चौथी अग्नि तो उनको प्राप्त ही नहीं हुआ, तो पांचवी अग्नि की तो कल्पना ही छोड़ दो। इस तरह यह संकेत किया। रूपाणि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि सगुणेर वृणोति क्रिया गुणेरात्म गुणेश्च तेषां संयोग हेतु रपरोपि दृष्टः। उस जीवात्मा का अपर अपि स्वरूपम दृष्टः, दिखाई दिया है। उस जीवात्मा का दूसरा स्वरूप क्या है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।